ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
மந்திர பாஸ்.
தேஹம் ப்ராணமபீந்திரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விதுஹ ஸ்த்ரீபாலாந் ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி
ப்ராந்த ப்ருஷோ வாரிண
மாயா சக்தி விலாஸ கல்பித மஹா தஸ்மை ஸ்ரீ குரு மூர்த்தயே நமஇதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தயே ஸ்ரீ
தேஹம் பிராணமபிந்திரியாணாம் அபிசலாம் புத்திம் ச சூன்யம் விதுஹ. கல் ஹம்னே விசார் விமர்ஷ் கியா பின் மதாதிகாரியோ கே பாரே மே. சப்ஸே பஹலே ஹம்னே தேகா ஜோ லோக் கேதே ஹே அஹம் தேஹ மே தேஹ ஹூ ஐஸா மானனே வாலே சார்வாக் ஹே. और चार्वाक एक पूरा संप्रदाय है जिसका लोकायतनवादी भी कहा जाता है. उसके बाद हमने देखा अहम प्राणम, मैं प्राण हूं और प्राण ही आत्मा है ऐसा मानने वाला एक दूसरा संप्रदाय है जिसको प्राणात्मवादी कहते हैं. फिर कई लोग कहते हैं कि इंद्रिय ही आत्मा है, इंद्रियाणी अहम इति विदुहु, इंद्रियात्मवादी कहते हैं उसको. और फिर देखा मन को आत्मा मानने वाले, और अंत में हम विचार विमर्श कर रहे थे चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुहु. कोई लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं, और बुद्ध संप्रदाय में एक बहुत बड़ी बात कही, आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं और शून्यम विदुहु, तो आत्मा शून्य है. और उनका सिद्धांत है सर्वम शून्यम शून्यमिति. तो उसके बारे में जो कल चर्चा अधूरी छोड़ी थी उसके बारे में भी आगे चलते हैं. शून्यवादी बौद्ध हैं, माध्यमिक को उनको कहते हैं, तो उनका माध्यमिक एक संप्रदाय है बुद्ध का. और आत्मा भाव स्वरूप नहीं, अभाव स्वरूप है. शून्य मतलब अभाव, टोटल नॉन एग्जिस्टेंस. तो इसकी बात कर रहे थे और समय खत्म हुआ था, वहां से आगे चलते हैं. क्षणिक विज्ञानवाद जो बौद्ध धर्म में है, ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं लिखा है. उनका जो बड़ा धर्म ग्रंथ है धम्मपद, वो भी भगवान बुद्ध का शरीर छूटने के बाद में 12 के 11 अनुयायी थे वो सबने मिलके वो लिखा है. इसलिए बुद्ध ने क्या कहा है, ऐसी बात कितनी है उसके लिए एक प्रश्न है. स्वयं बुद्ध की हयाती में नहीं लिखा गया ये, उनकी देह की मृत्यु के बाद धम्मपद पूरा लिखा गया. मगर वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो बुद्धि क्षणिक बुद्धि है, बुद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी आपकी बुद्धि मंद हो जाती, कभी तीव्र हो जाती, कभी आपको अच्छा महसूस होता, कभी नहीं होता, कभी आप निर्णय ले सकते हो, कभी निर्णय लेने में अनेक घंटे और दिन के दिन बीत जाते हैं. तो कहते हैं बुद्ध धर्म वाले क्षणिक बुद्धि वही आत्मा है, और बौद्ध एक ऐसा मत है. देखिए बुद्धि को आत्मा मानेंगे तो वेदांत कहता है कि क्या उसमें दोष आएगा. बुद्धि है ने ये चेतन नहीं है। आप पहले ही शांति पाठ वगैरह करके बाद जब प्रार्थना करते हैं क्या बोलते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, यानी मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। और ये लोग कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, वेदांत का यहां थोड़ा भेद है। तो देखेंगे बुद्धि को अपनी स्वतंत्र सत्ता और स्फूर्ति नहीं है। सत्ता से मतलब है एग्जिस्टेंस, फूर्ति से मतलब है अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, जिसको अपनी चेतनता ही नहीं है। आत्मा की चेतनता थोड़े समय के लिए बुद्धि ले लेती है और अपना काम चलाती है। समझने के लिए दृष्टांत भी दे चुका हूं, लोहे का गोला हाथ में पकड़ते हैं, शॉर्टपट गोला फेंकते हैं गेम्स में, और एक होता है हैमर थ्रो, जंजीर लगी हुई है और यूं घुमा के एथलेट फेंकता है, मगर वो गोला जब हाथ में पकड़ता है तो जल नहीं जाता है क्योंकि वो गोला गर्म नहीं है और वो गोले में से प्रकाश भी नहीं निकलता है। मगर वही लोखंड का गोला फर्नेस के अंदर रख दिया जाए जिसका तापमान हजार हजार से ऊपर होता है और एक घंटा फर्नेस में रखोगे तो कैसा हो जाएगा, है काला लाल हो जाएगा और उसको चिमटे से पकड़ना पड़ता है। फर्नेस में डाला था, हाथ से डाला था, अब चिमटे से पकड़ के एक कोने में रख दिया तो प्रकाश देता है। कितना समय, आधा घंटा प्रकाश देगा, फिर ठंडा हो जाएगा तो लाइट नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश वो देगा और उष्मा भी देगा, गर्मी भी देगा। क्यों? अच्छा, लोहे का गोला है, उसका धर्म नहीं है गर्मी देना, उसका धर्म नहीं है प्रकाश देना, तो क्यों ऐसा हुआ? संसर्ग दोष, अग्नि के संपर्क में आने से उसका धर्मगुण उसने ग्रहण कर लिया। इसलिए सत्संग का महत्व है। चोर चपाट लोगों के साथ रहोगे तो ऐसे ही बनोगे और संतों के साथ रहोगे सत्संग करोगे तो ऐसा साधु जैसे बनोगे, सज्जन बनोगे। तो वो संसर्ग हो गया लोहे का अग्नि के साथ। ऐसे ही मन बुद्धि इंद्रियां समंदर है पर अंदर आत्मा भी है, तो आत्म तत्व के संपर्क में आने से फॉर द टाइम बींग जैसे लोहे के गोले ने उष्मा और प्रकाश ले लिया, ये बुद्धि ने धर्म ले लिया जानने का, ज्ञान का। क्योंकि आत्मा कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ज्ञान स्वरूप है, तो बुद्धि भी जानती है, तो थोड़े समय के लिए ले लिया। मैं कहना क्या चाहता हूं, वेदांत का सिद्धांत है बुद्धि जो है वो स्वतंत्र अपने आप सत्ता और स्फूर्ति नहीं रखती है, आत्मा से लेती है। और ऐसी जड़ बुद्धि है वो आत्मा कैसे बन सकती है? जैसे कि इंद्रियां से, आंख से हम देखते हैं तो मुर्दे में आंख तो है मगर मुर्दा नहीं देखता है क्योंकि मुर्दे में आंख है, दृष्टि नहीं है और लोग समझते नहीं है। इंद्रिय का नाम क्या है, दृष्टि है, वो इंद्रिय है और वो तो उत्क्रमण के समय जीवात्मा लेके जाता है। मन सष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षदी, वो जीवात्मा लेके जाता है और मां के पेट में जो गर्भ है ना वो तो जड़ है, वो जो अंदर आंख वांख बच्चे को सब है मगर नहीं देख सकता वो, तो ये जीवात्मा जाके घुसता है चेतन लेके, तब वो बच्चा अंदर है उसकी आंख से वो देख सकता है जब डिलीवरी होती है। तो अब बात समझ में थोड़ी थोड़ी आती है ना भाई, तो बुद्धि जड़ है। तो वेदांत कहता है कि बुद्धि जड़ है इसलिए बुद्धि कभी आत्मा नहीं बन सकती, नंबर वन। नंबर टू, आत्मा कैसा है, अजो नित्य शाश्वत हो एम पुराण, आत्मा तो अजन्मा है और ये जो बुद्धि है ना ये माया के सत्व गुण से बनी है। त्रिगुणात्मिका माया, माया के तीन गुण है सत्व रजस और तमस, तो सत्व गुण से पूरा अंतकरण बना और अंतकरण के भीतर ही बुद्धि आती है। अंतकरण चतुष्टय कहते हैं, यानी कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सत्व गुण से बना है यानी सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है यानी सत्व गुण से जन्मा है, और आत्मा तो अजन्मा है। तो आत्मा अजन्मा है और ये बुद्धि तो जन्मी हुई है, तो जन्मी हुई चीज कभी आत्मा नहीं हो सकती है। तीसरा कार्य, सत्व गुण से अगर बुद्धि का जन्म हुआ है तो सत्व गुण कारण है और बुद्धि क्या है, कार्य है। आत्मा किसी का कार्य भी नहीं बन सकता और आत्मा कोई का कारण भी नहीं है। नहीं स्वामी जी कहते ना आत्मा से, ये तो समझाने के लिए आपको केजी क्लास में होने,
इसलिए कहा कि आत्मा से उत्पन्न होता है, नहीं उत्पन्न होता ही ऐसा समझना, तो ऐसा भी समझा देता हूं यार, क्या बात घबराते क्यों, बोलो आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ ऐसा समझना है कि नहीं हुआ ऐसा समझना है, उत्पन्न हुआ समझना है तो समझो जैसे दूरी से सर्प पैदा होता है, हैं ऐसे हुआ है और नहीं हुआ है तो सिद्धांत है। किंची जायते, देखो मांडू के कारिका का बहुत बड़ा सिद्धांत है, शरीर का भी जन्म नहीं, आत्मा का भी जन्म नहीं, जीव का भी जन्म नहीं, ईश्वर का भी जन्म नहीं, कोई चीज का जन्म होता ही नहीं, मगर दिखता है कहलाता है। जैसे आप फादर हो पिता हो तो पिता का जन्म होता है नहीं होता है, पति का जन्म होता है नहीं होता है, पत्नी का जन्म होता है नहीं, मगर हस्तु मिलाप के बाद एक पति कहलाता है एक पत्नी कहलाती है, मगर दोनों में से पति पत्नी का जन्म नहीं होता है, समझना है बात, समझ में आती है, एक जन्म मैं पिता हूं, पिता का जन्म नहीं होता है, वो तो पुत्र का जन्म हुआ, संतान का जन्म होते ही वो व्यक्ति बाप कहलाता है, बाप होता नहीं है, बाप बनता नहीं है, मगर अब मैं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता हूं इसलिए मेरे लड़के के पीछे मेरा नाम ठोकना चाहता हूं, इसलिए कहता है मैं बाप 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 कहलाया। बाप तो पूरे जगत में एक ही है, कौन, ओबामा, ओ बाप और मां। तो देखिए साहब, आत्मा किसी का कार्य भी नहीं किसी का कारण भी नहीं, कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। वेदांत आगे कहता है बुद्धि में उदय और अस्त है, सो जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती, जागते हैं तो बुद्धि काम करती है, बुद्धि में उदय और अस्त है और आत्मा तो उदय अस्त रहित है, आत्मा में ना उदय है आत्मा में ना अस्त है, आत्मा तो शाश्वत भाव स्वरूप है, एवर एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बिकम नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसा आत्मा है, वो आत्मा कभी भी बुद्धि नहीं बन सकता है। वन मोर पॉइंट, बुद्धि क्षणिक है और आत्मा शाश्वत है, बुद्धि में परिवर्तन होता है और आत्मा अपरिवर्तनशील सत्य है, इसलिए बुद्धि को आत्मा मानने वाले बुद्ध संप्रदाय वाले हैं उनको वेदांत कहता है कि शक्य ही नहीं है कि बुद्धि है ये आत्मा है। अगर बुद्धि आत्मा है समझ लो, तो जब एक आदमी कहता है मेरी बुद्धि मंदमति, मैं तो मंदमति वाला हूं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मति, मति मतलब बुद्धि, मूढ़ बुद्धि वाला मंद बुद्धि वाला है, तो जब मैं ये कहता हूं मैं मंद बुद्धि वाला हूं और मैं कहता हूं कि मैं तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाला हूं, यानी मैं क्या कहता हूं, आई एम इडियट और आई एम जीनियस, तो ये जीनियस और इडियट किसके बारे में कहा जाता है, बुद्धि के बारे में, तो ये इडियट बुद्धि है और जीनियस बुद्धि उसको तो मैं जानता हूं, तो जानने वाला हमेशा जो चीज जानी गई उससे अलग होता है, तो बुद्धि सबसे सूक्ष्म है। अगर आप थोड़ा प्रकरण ग्रंथ पढ़े हैं तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, हाँ विज्ञानमय कोष यानी बुद्धि, और उसके भीतर क्या आता है, आनंदमय कोष। तो आत्मा तो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, इसलिए तो बुद्धि को जानता है कि मेरी मंद बुद्धि है तीव्र बुद्धि, तो जो जानने वाला है वो जानी गई चीज से अलग होता है, ये ढंग से देखेंगे तो भी बुद्धि कभी आत्मा नहीं हो सकती है। तीक्ष्णिक बुद्धि वाला चलाम बुद्धि, उसका खंडन किया गया, शून्यम विदुहु, और कोई लोग आत्मा को शून्य मानते हैं और शून्य मानने वाले भी ये बुद्ध धर्म वाले हैं। हमारा एक स्वामीनारायण संप्रदाय, उसमें बहुत ये इधर 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 बहुत ब्रांचेज है अलग अलग, ऐसे बुद्ध धर्म में भी वो शून्यवादी अलग है, माध्यमिक अलग है, ऐसे कई अंदर भी पेटा विभाग है, तो एक ऐसा विभाग है बुद्ध धर्म में जो कहता है आत्मा शून्य है, और आत्मा शून्य है, अहम शून्यम इति विदुहु, तो शून्य स्वरूप आत्मा है ऐसा उन लोगों ने कहा। अब समझना, अगर वो कहते हैं कि आत्मा शून्य है, शून्य मतलब क्या, टोटल नॉन एग्जिस्टेंस, मैं हूं ही नहीं, चलो मैं कह दो मान लो, सच मान लो, कि आत्मा शून्य है. नाउ प्लीज बी केयरफुल. आत्मा शून्य है ऐसा जाना किसने? हु इज नोअर? नोअर मस्ट बी अदर देन नोन ऑब्जेक्ट. चलो शून्य है तो शून्य को जाना किसने? अगर कोई ने जाना तो वो जड़ है या चेतन है? अगर जड़ है तो वो जान नहीं सकता कि शून्य हूं. और शून्य खुद कैसे जानेगा कि मैं शून्य हूं? देखो ये किताब है, किताब ने कह दिए, किताब को देखने वाला कहता है. ये टेबल है, टेबल नहीं कहता है, टेबल को देखने वाला कहता है टेबल है. ये गेरवा वस्त्र है तो गेरवा वस्त्र नहीं कहता मैं गेरवा हूं, उसको देखने वाला कहता है. समझ में आता है? अगर आत्मा शून्य है तो शून्य है ऐसा जाना किसने? अगर जड़ है जानने वाला तो जान नहीं सकता है. अगर चेतन है तो सीधी बात हम कहते हैं ठीक है चेतन है तो वो जो शून्य है वो तो जड़ हो गया, तो उसको जानने वाला आत्मा ही चेतन है और अलग हो गया, इसलिए आत्मा शून्य नहीं हो सकता है. ये माध्यमिक बौद्ध दर्शन गत मत है ऐसा. और उनका महावाक्य, जैसे हमारे महावाक्य चार हैं, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे उनका एक ही महावाक्य है. क्या? सर्वम शून्यम शून्यम, ये महावाक्य. सब कुछ शून्य ही शून्य है. पारमार्थिक सत्य भी शून्य है. जगत को संवृत्ति सत्य यानी क्षणिक सत्ता वाले मानने वाला ये पूरा संप्रदाय है. आत्मा शून्य है. अब थोड़ी बात कहता हूं समझने का प्रयत्न करना. वेदांत वाले कहते हैं कि हमारे तीन सत्य हैं, एक पारमार्थिक सत्य, एक प्रातिभासिक सत्य. पारमार्थिक जो ऐसा का ऐसा ही रहता है, कोई परिवर्तन, हमेशा पहले भी सत्य था अभी भी सत्य है और सत्य ही रहेगा, और वो आत्मा पारमार्थिक सत्य है. एक होता है प्रातिभासिक सत्य जो एक समय में भी एक समय में ही सत्य रहता है, दूसरे समय में फिर असत हो जाता है. मतलब क्या? स्वप्न, स्वप्न सृष्टि, स्वप्न में है वहां तक सत्य है, स्वप्न टूटता है तो क्या जागृत में कहते हैं सच नहीं है, वो असत था. क्यों? स्वप्न में मैं भिखारी हूं मगर मैं तो बालकेश्वर में रहता हूं तो करोड़ों का तो मेरा फ्लैट है, मैं भिखारी कैसे हूं? मगर जागने के बाद पता चलता है कि मैं बालकेश्वर में रहता हूं, करोड़ों का मेरा फ्लैट है. हां मगर स्वप्न में क्या था? भिखारी. तो स्वप्न समय में एक ही समय में भिखारी था वो सत्य है. स्वप्न टूटते ही दूसरे काल में जागृत काल में वो सच मानी गई चीज असत हो जाती है. इसको कहते हैं प्रातिभासिक सत्य. और एक होता है व्यवहारिक सत्य. क्या नाम भाई तुम्हारा? ये कहते मेरा नाम गिरीश है, गिरीश गैस वाला. अरे तू तो सच्चिदानंद आत्मा है. हां मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सुप्रीम रियालिटी, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ पारमार्थिक सत्य मैं सच्चिदानंद हूं. मगर व्यवहार चलाने के लिए अगर मैं गिरीश नाम नहीं रखूंगा ना मेरा, तो मैं ये आश्रम का ट्रस्टी हूं. वो लोग चेक लेके जाएंगे, आश्रम के लिए खर्च पैसा निकालना होगा तो गिरीश ड्रेस वाला सही करेगा. तो ये व्यवहार चलाने के लिए जो नाम है उसका नाम क्या है? व्यवहारिक सत्य. समझ में आता है? अगर बुद्ध की बात मानते हैं कि आत्मा शून्य है तो सब कुछ शून्य ही है, सत्य कोई चीज है ही नहीं. जगत की सत्ता भी क्षणिक और शून्य हो गई. अगर आत्मा ही शून्य है तो जगत भी शून्य, अगर जगत शून्य है तो व्यवहार कैसे चलेगा? समझ आती बात? दो मुद्दे ऐसे हैं इसलिए बुद्ध धर्म को भारत की सरहद छोड़कर बाहर जाना पड़ा. सिलोन में चले गए, कोरिया में चले गए, चीन में चले गए, जापान में चले गए जाना पड़ा. क्यों? एक तो ईश्वर के अस्तित्व का इनकार कर दिया वो लोग, ईश्वर को नहीं मानने वाले, वो अनिश्वरवादी है और आत्मा को शून्य मानते हैं. तो भारत की संस्कृति, वेद उपनिषद वाले जो ऋषि मुनि है, ये हमारी परंपरा कैसे मानेगी? वरना तो आज हम सब बौद्ध होते साथ. मगर बुद्ध धर्म को बाहर जाना पड़ा और आदि शंकराचार्य जी ने खदेड़ दिया उसको बाहर, शून्य वाले को. तो समझाता हूं धीरे धीरे. अगर आत्मा शून्य है तो जगत भी शून्य हो गया, जगत शून्य है तो व्यवहार शक्य ही नहीं है, और व्यवहार अगर शक्य नहीं है तो जीवन कैसे जिएंगे हम लोग? अगर आत्मा शून्य है तो बुद्ध का मोक्ष भी तो शून्य हो गया ना, व्यवहार भी शून्य हो गया, समाधि भी शून्य हो गई, साधन और साधना भी शून्य हो गए. और साधना की आवश्यकता ही नहीं. क्यों? आत्मा प्राप्ति नहीं करना है, आत्मा तो शून्य है तो कौन जनजप करेगा साधन छुटाने की? साधना कौन करेगा? समझ में आती मेरी बात? मैं इसलिए समझाता हूं, ऐसे ही धर्म को मानने वाले बॉम्बे के इर्द गिर्द लाखों अनुयायी को इकट्ठा करके ध्यान ज्ञान आंखें बंद करके सिखाते, वहां कुछ करना नहीं होता। मगर वो लोग जाने वाले समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ठीक समझिए, बुद्ध का मतलब है शून्यवाद। आत्मा शून्य है तो साधना आवश्यक नहीं, जो सर्वम शून्यम शून्यम है तो अंतिम सिद्धि जो है वो भी शून्य हो जाएगी। अगर आत्मा शून्य है तो आत्मा से जन्मा हुआ जगत भी शून्य है और जगत की सिद्धि पूर्वार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो जगत अगर शून्य है तो खाना पीना सोना ये व्यवहार सब शून्य हो जाएगा। और शून्यवादी शून्य मतवादी हैं, ये तो सबको शून्य मानते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट। अगर ऐसा भी सच है तो आगे सुनिए, शून्य मतलब सस्य शुंगवत, सस्य के सिंह है ऐसा, तो भाषेगा ही नहीं, तो कर्तव्यता और अकर्तव्य का भेद कहां रहेगा? और सब कुछ शून्य है तो विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर हिंसाम न कुर्याम, हिंसा मत करो, ऐसा जो कहा, और धर्म का पालन करो, डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, सब कुछ शून्य है तो ये उपदेश की जरूरत नहीं है। चोरी मत करो, अरे चोरी करने में कोई अर्जन नहीं, क्यों? बौद्ध मत के सिद्धांत के अनुसार सब शून्य है, चोरी करो। तो देखिए बहुत बड़ी बात हम समझेंगे तो, पर आजकल लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। और जैसे गाड़ी रे प्रवाह चलता है ऐसे लोग चले जाते, हजारों की भीड़ लगती है साहब। तो देखिए उपनिषदों का शून्यवाद के सामने, वेदों का उपनिषदों का, ये हमारी परंपरा का बड़ा सिद्धांत है कि श्रुति में जगत की उत्पत्ति सत आत्मा से मानी गई है। अगर उत्पत्ति समझना चाहते हैं तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, और छांदे के उपनिषद कहता है तत् सत्यम स आत्मा, आत्मा तो सत्य है और सत्य को ही आत्मा कहा जाता है। तो ऐसे वेद उपनिषद की परंपरा है वो आत्मा शून्य है ये चीज नहीं मान सकती है। अभी एक दो चीज बात करूंगा और फिर दूसरी बात करेंगे। यही बौद्ध मत वाले, माध्यमिक बौद्ध हो, शून्यवादी बौद्ध हो, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हो, कई ब्रांच हैं इसमें, वो लोग क्या मानते हैं? हम पंच महाभूत को मानते हैं, वो लोग पंच महाभूत को नहीं मानते, चार महाभूत को मानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु, आकाश को नहीं मानते, वो तो शून्यवाद हो गया, शून्य भी। और ये कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये चारों के परमाणु को मिलाकर चतुर्भूत संघात, संघात मतलब समूह, ए ग्रुप, चतुर्भुज संघात बनता है और वो संघात से परमाणु बनता है और परमाणु से ही सब कुछ उत्पत्ति हुई है। थ्योरी ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू बौद्ध मत। अब इतनी बात एक दफा और दोहराई देता हूं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये सबका एक एक मॉलिक्यूल और वो सबको मिला के चार का संघात होगा और उसको कहते हैं परमाणु और वो परमाणु से पूरी जगत की उत्पत्ति हुई है। हम पांच पंच महाभूत को मानते हैं, वो चार को मानते हैं। अब मेरी बात थोड़ी दिमाग लगा के सोचना, चलो मान लिया कि चार हैं, उसमें से परमाणु बना और वो परमाणु से जगत की उत्पत्ति होती है। अब देखिए साहब, मैं ये प्रश्न करता हूं कि परमाणु जिसे बुद्ध मत के अनुसार जो परमाणु से चतुर्भुज संघात उससे अगर जगत की उत्पत्ति होती है वो परमाणु जड़ है या चेतन? जड़ है तो उसमें से कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये केस देता हूं चश्मा का, सेब डिपोजिट वॉल्ट में रख लो 10 साल, एक के दो बनेंगे? नहीं बन सकते। समझ में आती भाई? अगर परमाणु जड़ है तो उससे उत्पत्ति हो ही सकती नहीं है साहब। अच्छा, अब कोई कहेगा ये अगर परमाणु चेतन तत्व है तो चेतन ही है,
तो उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही सब करेगा उत्पत्ति। और आगे बात देखिए, आपने पहले कहा कि वो परमाणु जड़ है और जिससे उत्पत्ति होती है, तो जड़ है तो पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये सबको इकट्ठा करेगा कौन? अगर परमाणु जड़ है जिसके साथ बौद्ध मत के अनुसार उत्पत्ति होती है, अगर परमाणु जड़ है तो ये चार को इकट्ठा करेगा कौन? संघात बनाएगा कौन? चतुर्भुज संघात होगा कैसे? एक बात समझाता हूं, ईंट ईंट मकान बना के ईंट चाहिए ना, ईंट किसमें से बनती है? मिट्टी से, खाली मिट्टी से? हाँ, बहुत ऐसी बात है, पानी चाहिए ना, ये गारा मिट्टी करके पानी डालते हैं फिर गूंथते हैं ना, जैसा आटा गूंथते ना रोटी बनाने के लिए, ऐसे मिट्टी को गूंथते हैं और वो मिट्टी को ढांचे में डालते हैं तो ईंट बनती है। अच्छा साहब, एक बाल्टी भर के पानी रख दो और यहां पर मिट्टी रख दो और मिट्टी को बोलो ओ मिट्टी जाके पानी में गिर, ओ पानी जाके मिट्टी में गिर, वो दोनों अपना मिल जाएंगे। क्यों? कौन चाहिए? कुंभार, और वो चेतन है। समझ में आती बात? नहीं समझेंगे बंबई वाले, ईंट देखा ही नहीं है बना दे, अब बंबई वाले क्या समझेंगे? वो बात करता हूं, बंबईया बात करता हूं। एक प्लास्टिक की बाल्टी पड़ी है, है? उसका हैंडल नहीं है, एक लोहे का हैंडल इधर रखा है और बाल्टी उठाने के लिए हैंडल को जोड़ना है, तो वो हैंडल लग जाए उसमें बाल्टी में, हैंडल अपने आप लग जाएगा। अब समझ में आती है बंबई की बात, हैंडल लोहे का हैंडल है, प्लास्टिक की बाल्टी में अपने आप नहीं जुड़ेगा। क्यों? उसको जोड़ने वाला कोई कारपेंटर हो, कोई कारीगर हो, वो चाहिए, उसमें छेद भेद करके लोहे के हैंडल को प्लास्टिक में जोड़ेगा, वो चेतन चाहिए। समझ में आती बात? यहां पर कहा बहुत सिद्धांत में कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु वो चारों को मिला, मरे मिलाएगा कौन? मैं इसमें प्रश्न खड़ा करता हूं, बुद्ध धर्म वाले ईश्वर में नहीं मानते और हम मानते हैं कि ईश्वर से ये सब उत्पत्ति हुई है। माया अध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवदगीता ये कहती है, कृष्ण परमात्मा कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये माया की मदद से सब कुछ मैं सर्जता हूं और बार बार सर्जता रहूंगा और मैं भी आता रहूंगा, कब कब? जब जरूर पड़ेगी तब तब, संभवामी युगे युगे। और वो ईश्वर के स्टैंड पॉइंट से बोलता है और हम लोग ईश्वर में मानने वाले हैं और ये अनिश्वरवादी है। इसलिए मैं पूछता हूं कि चार को जोड़ेगा कौन अगर सब तत्व जड़ है तो? और एक बात कहता हूं, कई बहने बैठी है, कोई के गले मैंने देखा कि माला है मोती की, तो मोती अलग रख दो, चांदी का तार अलग रख दो और उसको बोलो मोती को कूद कूद के तार में घुस, घुसेगा नहीं। चंपा है, मोगरा है, चमेली है, धागा रख दो और उसको बोलो हार बना, नहीं बनेगा। तो हार पिरो, फूल पुष्प पिरोने के लिए कोई चेतन माली तो चाहिए ना, वहां माली नहीं समझते, फ्लावरिस्ट का बोर्ड लगा होता है तो वो अरेंज करता है, बुके बुके सब बनाता है, वो बुके उसमें अपने आप ये फूल घुस नहीं जाते भाई। तो देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, संघात करने के लिए कोई न कोई चीज की चेतन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही क्या समझी, फूल की माला और मोती और ये सब समझा दो। अरे ये बात करके तो आगे बात करता हूं, पूरा ब्रह्मांड है, सर्जन है, उसमें सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, पदार्थ है, धूमकेतु है, हे ये सबको सिंक्रोनाइज करने वाला, ऋतु ऋतु में ये फूल आएंगे ये फल आएंगे ऐसा करने वाला, सुबह होगी शाम होगी ऐसा करने वाला, नदियां बहती हुई पर्वत से निकलकर सागर में ही जाएंगी ऐसा नियम बनाने वाला कोई तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और बुद्ध धर्म वाले तो कहते हैं आत्मा तो शून्य है, तो कोई है ही नहीं, तो एक रचा किसने फिर सब? देखो मैं कोई धर्म की टीका नहीं करता मगर आपको सत्य समझाता हूं, मेरा काम है सिद्धांत को समझाना, मैं कोई धर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। समझ में आती बात? सत्य आपको समझना है तो समझिए। आगे कहता हूं, ये जो सिद्धांत बनाया बुद्ध धर्म ने, पंचस्कंद स्कंद सिद्धांत ऐसा है कि चेतन के बिना सब परमाणु से होता है, ऐसा मानते हो लोग। अब एक बात समझा देता हूं लास्ट में, उनकी बात ऐसी है, अब मच्छर को भी बेहोश बना दिया जाए ना तो बेहोश मच्छर भी क्यूनाइन की गोली निगल नहीं सकेगा, ऐसी बात है। आदमी तो क्या नहीं स्वीकार कर सकते कि आत्मा शून्य है, ऐसी बात मेरी बात नहीं मानोगे आप, शास्त्र की बात नहीं मानोगे, साइंस की बात तो मानोगे। मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे को प्रश्नोत्तर भी करनी है, फिर भी थोड़ी बात सर्न के बारे में आपको बता देता हूं, CERN सर्न, जैसी बड़ी खोज करने वाली आज जीवित संस्था है, द यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स, और ये समय में बहुत दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग किया उन लोगों ने, खरबों खरबों रुपया खर्च करके स्विट्जरलैंड के अंदर जिनीवा से एक टनल बनाई गई और फ्रांस की बॉर्डर तक टनल चली 29 किलोमीटर तक। उनका काम क्या था, 2000 साइंटिस्ट वर्ल्ड के इकट्ठे हो गए सन के अंदर, ये 50 साल से काम चल रहा था, अभी फलीभूत हुआ है। और जैसे बुद्ध धर्म वाले कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि और वायु चार है, सबसे पहले तीन अणु की खोज कर ली गई, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ऐसे पांच खोज लिए, मगर फिर भी इनका भी प्रश्न यही था कि ये पांच अलग अलग है, ऐसा होता है प्रोटॉन बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूमते रहते हैं, जैसे सूर्य बीच में है और ग्रह घूमते रहते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये सबको जोड़ेगा कौन, पांच खोज ली वो लोग ने भी साइंटिस्ट ने, और 2000 साइंटिस्ट लगे थे उसमें, और छठा एक कण ढूंढ रहे थे और रिसर्च अभी कंप्लीशन के ऊपर आ गया, और छठा भी खोज लिया गया हिग्स बोसॉन। मेरे पास समय होता तो मैं स्टीफन हॉकिंस और आइंस्टाइन को लिए कैसी बातें मैंने बहुत जगह में की है, मगर वहां पर मेरे पास ब्लैक बोर्ड चाहिए वो ग्राफ वाला और सब झंझट में अभी नहीं पढ़ता हूं, आज समय भी नहीं मेरे पास, मगर मैं समझाना ये चाहता हूं आपको कि छठा जो कण जिसको कहते हैं वो ढूंढ लिया गया हिग्स बोसॉन। फिर जो साइंटिस्ट नई नई खोज करते हैं ना तो उसको नाम देते हैं, आपको तो सब पढ़ते नहीं होंगे तो पता नहीं होगा, एक स्टार है उसका नाम महात्मा गांधी भी है अगर पता हो तो, कोई भी नई चीज खोजते हैं तो उसको नाम देते हैं, तो हिग्स बोसॉन, और उसको कहा दैवीकरण, वाह वाह वाह। और अभी जो खोज इसका निष्कर्ष हमारे सामने आया वो लोग ने भी स्वीकार कर लिया कि अलग अलग तो हैं मगर जोड़ने के लिए कोई चेतन तत्व चाहिए, और उसका नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। और खोज कब हुई है, जुलाई के अंत में, जुलाई के अंत में 2012 में अभी ये खोज हो गई, और जो नया एक छठा अणु कण खोज लिया वो लोग ने उसका नाम गॉड ऑफ पार्टिकल दिया है, उसको हिग्स बोसॉन से पहले जाना जाता था, और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये सबका संयोजन करने के लिए संघात करने के लिए ये छठे की आवश्यकता थी, और वो मानने लगे विज्ञान वाले भी मानने लगे। और क्यों मानने लगे, मैंने कहा कि समय मेरे पास कम है वरना समझाता, जब भी प्रयोग शुरू हुआ और 27 किलोमीटर की लंबी टनल उसका प्रवेश द्वार था, वो प्रवेश द्वार के ऊपर सबसे पहले भगवान की प्रार्थना की गई और हमारे नटराज की मूर्ति वहां लगाई गई, कहां पर, स्विट्जरलैंड में जिनीवा में, और बड़ी नटराज की मूर्ति और शुभारंभ हुआ ये प्रयोग का, और वो नटराज की मूर्ति इसलिए लगाया गया नीचे लिखा हुआ है, आज भी जाइए अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हैं तो जिनीवा में, और वहां पर है कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा,